ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी सुनते हैं, जिसमें बाबा ने एक तो हमको निश्चिंत किया है और दूसरा खुशी में रहने की टिप्स बताई है। क्योंकि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ खजाना खुशी है। जब हमारे जीवन में खुशी आती तो औरों के जीवन में हम खुशियों की बाहर लाते। तो बाबा ने हम बच्चों को आज कहा कि तुमने अपने जीवन को इंश्योर किया है बाबा के पास, लेकिन वंडरफुल बात यह है कि सिर्फ 21 जन्मों के लिए ही इंश्योर नहीं किया है, बल्कि बाबा ने कहा 40-50 जन्मों के लिए तुमने अपने जीवन को इंश्योर किया है, माना सत्युग और त्रेता युग में। ये तो हम सभी जानते हैं, वह मरते नहीं है कोई भी, लेकिन द्वापर युग में और कलयुग के आरंभ में भी हम सभी हेल्दी वेल्दी रहते हैं। इसलिए बाबा ने वो सारा काउंट करके कहा कि 40-50 जन्मों के लिए तुमने अपने जीवन को इंश्योर किया है। ये तो दुनिया में भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन वहां जो इंश्योरेंस होता है और हम बच्चों ने जो बाबा के इंश्योर कंपनी में इंश्योरेंस किया है, दोनों में भी बाबा ने अंतर बताया है। वो तो हम सभी जानते ही हैं कि वो इंश्योरेंस होता है दुनिया में कि मरने के बाद लौकिक वालों को पैसा मिले हमारे इंश्योरेंस का, लेकिन हम जो इंश्योरेंस कराते हैं वो हम मरते ही नहीं हैं, अपने लिए ही कराते हैं। तो इतना सुंदर इंश्योरेंस कंपनी अभी जो खुली हुई है, तो कोई भी बाकी रह ना जाए इंश्योरेंस कराने के सिवाय। तो बाबा ने कहा जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी भी खुशी रहती है। तो ये स्मृति में रहे कि हमने बाबा के पास अपनी लाइफ को इंश्योर कराया है तो सदा खुशी रहेगी। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि मैं रूहों से ही बात करता हूं, तो आप बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जितना आत्म अभिमानी रहेंगे तो खुशी रहेगी। तीसरी बात, बाबा ने कहा बच्चों को सर्विसेबल भी बनना है, बाप को याद भी करना है और साथ साथ धारणाएं भी अवश्य होनी चाहिए। भले गृहस्थ व्यवहार में रहे, लेकिन कम से कम इस पुरुषार्थ को 8 घंटे तक ले जाएंगे तो बहुत खुशी रहेगी। और बाबा ने आज हम बच्चों को बेहद का वैराग्यपन की भी स्मृति दिलाई है। और इस बेहद के वैराग्यपन की स्मृति रहेगी तो बुद्धि में रहेगा इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। एक बाप से ही सुनना है, एक बाप की ही याद में रहना है, तो अंदर में खुशी रहेंगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को सावधानी भी दी है, संघ से अपनी संभाल करनी है। संग तारे कुसंग जुबोए, अपने बच्चों की भी संभाल करनी है, कहा उल्टी सुलटी खाने पीने की उनको आदत ना पड़ जाए, क्योंकि जो बचपन में आदत पड़ती है ना वो हमेशा हो जाती है। हम सभी जानते हैं जो भी बाबा के बच्चे एकदम बचपन से बने हैं ना, चाहे बड़े होकर के वो ज्ञान में नहीं भी चले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में गए हैं, लेकिन उनको अटेंशन तो रहता है, बाबा की तरफ खींच रहती है। कहां भी किसी भी शहर में जाएंगे, बाबा का झंडा देखेंगे तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। क्यों? बचपन में पालना ली है, इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को तो संभाल नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की भी संभाल करनी है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, 15 अप्रैल की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहो रिहान करते हैं, बातचीत करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास, किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं हम बाबा के पास? 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ को इंश्योर करने किया है ना हम सभी ने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। इंश्योरेंस कंपनी कितनी तो गारंटी देती है कि हम कभी मरते ही नहीं है, अमर बन जाती है। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी दुनिया में लौकिक रीति से उन इंश्योरेंस कंपनीज में लाइफ लोग इंश्योरेंस कराते और हम बच्चे भी यहां बाबा के पास अपनी लाइफ इंश्योर करते, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखो, बाबा ने कहा मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले, तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि हम 21 जन्म मरे ही नहीं, जाते ही अमर लोक में है जहां मरना होता ही नहीं है, अमर बन जाए। सत्युग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं, मरते ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनीज की आवश्यकता नहीं है। अब भी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो तो कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। याद रहे तो खुशी रहेगी, अगर और बातें बुद्धि को घेर लेती हैं तो ये भूल जाता है, तो खुशी भी गायब हो जाती। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कौन आया, कौन आया? श्री बाबा आया, जिससे हम रू रिहान करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार वालों को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो? हम किस लिए करते हैं? 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, जाते ही अमर लोक में है जहां मरने का नाम ही नहीं है, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने व जीने की बात ही नहीं है, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं, औरों से नहीं। क्यों क्यों औरों से नहीं करते हैं? क्योंकि बच्चे ही अपने को आत्मा समझते हैं, बच्चे ही अपने बाप को पहचानते हैं। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। भले कोई कितनी भी अच्छी हिंदी जानता हो, लेकिन मुरली में बाबा की जो भाषा है उसको कोई भी समझ नहीं पाते हैं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं, तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं बाबा, कितने वर्षों से हम बच्चों को समझा रहे हैं तो भी कितने थोड़े समझते हैं। थोड़े अर्थात जो प्रैक्टिकल में लाते हैं उनके लिए कहा थोड़े समझते हैं। हैवी सेकंड की बात, हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है, उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं है। किससे? बाबा से स्वीट और कोई चीज होती नहीं है। इस याद करने में ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं, पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सत्य को कहा ही जाता है अमर लोक। जो सत्युग में जाएंगे वो भी अमर बनेंगे, और जो मूल वतन में रहेंगे वो भी अमर बनेंगे। क्यों? वहां मरने और जीने की बात ही नहीं है। ये है मृत्यु लोक, ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से सुनो, ममेकम याद करो। पार्वती के लिए ही क्यों कहा शंकर जी ने कथा सुनाई, औरों के लिए क्यों नहीं कहा? पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई थी। इसे यहां भी कई पार्वतियां होती हैं कि बाबा जो अमर कथा सुना रहे हैं ना, वो सुनते सुनते सो जाती है। शांति मिलती है ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, मामेकम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूं। जमा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं है। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, निश्चिंत। भावने का तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? हम कभी भी मरेंगे नहीं इस बात की खुशी रहनी चाहिए। लोगों को मरने का ही तो डर होता है। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है, ये भी मनमना भाव है। मूल वतन है मनमना भाव और अमरपुरी है मध्याची भाव। हर एक बात पे दो अक्षर ही होते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठिए। सबसे जास्ती मेहनत है ही किस बात की? पहले दिन से हमने वो पाठ घोटना शुरू किया है, अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सत्युग में कितने जन्म? बहन जी तो नींद में भी बता सकते हैं, है ना? सत्युग में 8 जन्म, द्वापर में देखो अभी कोई कोई तरफ से आवाज आई 12, त्रेता में 12 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना, अपने स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से क्या होगा? खुशी रहेंगे। आज खुशी में रहने की टिप्स बता रहे हैं बाबा। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर के हमको पावन बनाओ। पावन रहते हैं कहाँ? मूल वतन में, वो भी पावन धाम है, और दूसरा अमरपुरी में, सत्युग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते, मुक्ति में व श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में भी कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद होगा नहीं, चाहे सन्यासी है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे गृहस्थी है, किसी का भी पुनर्जन्म बंद नहीं होगा। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं, आवागमन से कभी भी छूट नहीं सकते हैं। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं, और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर कौन सा? बाबा ऊपर से गिनते हैं। फर्स्ट फ्लोर माना मूल वतन, खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, वो तो चाहे नीचे से गिनो चाहे ऊपर से गिनो, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, ये है फिर थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर भी कहो, दूसरा कोई फ्लोर है नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है ना 14 लोक होते हैं, तो 14 लोकी नाथ तो भगवान को बोलते ही नहीं है, भगवान को तो त्रिलोकी नाथ ही बोलते हैं, तो तीन ही लोक होते हैं, दूसरा कोई होता नहीं है। वो समझते स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं, फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। तुम बच्चे कौन हो, कौन है हम सभी, बेहद के वैरागी हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। बेहद के वैरागी की परिभाषा, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखना है, यह है मुख्य पुरुषरथ, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे बेहद का वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म, ये ज्ञान आया हमको, पहले हमने द्वापर से भक्ति की, फिर ज्ञान मिला तो वैराग्य आ गया, मालूम पड़ा ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन में जैसी आदत डालो वैसे आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष भी बड़ा गंदा है, कि संग से आने वाली बुराइयों का पता नहीं चलता, इसीलिए किसी ने कहा हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचा ले, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा। तो बाबा ने कहा आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे, ये विषय सागर वैशाल्य है। सत तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता, वह आकर सत्य बात समझाते हैं। तो बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूं। क्या कहा, हे रूहानी बच्चों मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूं। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव, अच्छा फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि पवित्र है ना, उनको चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति करने से देख सकते, साक्षात्कार हो सकता है। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनको साक्षात्कार होगा, शिव बाबा ही फिर कोई भी अपने बच्चे को जिसका हनुमान जैसा पुरुषार्थ होगा उसको इमर्ज करके उसको साक्षात्कार करा देगा, यदि अपना साक्षात्कार कराए तो वो मानेगा नहीं, हनुमान में ही श्रद्धा रखता है, इसीलिए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूं। आत्मा और परमात्मा में सिमिलरिटी क्या है वो बाबा बता रहे हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूं। वो कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय अर्जुन को ऐसे साक्षात्कार हुआ। उसने कहा बस मैं अभी सहन नहीं कर सकता हूं। बच्चा अपने बाप को सहन ना कर सके ये कैसे हो सकता। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। आत्मा और परमात्मा में समानता, सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबर वार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आता है। कितनी बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सत्युग और फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। बाबा का पार्ट संगम युग में चलता दुनिया को चेंज करने का। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति भी कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है। फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं, प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। पहला पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं, मैं आत्मा अमर हूं। फिर तुम रोते क्यों हो? कोई शरीर छोड़ जाता है या शरीर को कोई दुख होता है तो बाबा ने कहा रोते क्यों हो? ये तो देह अभिमान है ना, रोना अर्थात देह अभिमान। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्युग में है देही अभिमानी, इसीलिए वहां खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता है, देही अभिमानी होते हैं इसीलिए वहां रोना पीटना कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूं, ज्ञान सुनाते समय किसी हमारी अवस्था हो वो बाबा बता रहे हैं। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ। चाहे किसी को भी सुना रहे, ऐसा नहीं भाइयों को ही, चाहे बहनों को सुना रहे, लेकिन आत्मा भाई है, इसलिए ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे, सेवा भी होंगी और विकर्म भी विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब ये आदत पक्की हो जाएंगी। ये है गुप्त मेहनत, स्वयं को आत्मा समझना, औरों को भी आत्मा समझ करके उनके साथ व्यवहार में आना, ये है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो भल धंधा आदि करो, नींद भी करो, कोई हर्जा नहीं है, नींद के समय पर नींद भी करो, बाकी का समय बाबा का इसमें लगाओ, पुरुषार्थ में। 8 घंटा तक पहुंचना है तब खुशी रहेगी। खुशी के लिए और क्या युक्ति बताई, कि हमारा पुरुषार्थ 8 घंटे तक पहुंचे बाबा को याद करने का, तब अंदर में खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो तुम लिखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। नोट में जो हम लिखते हैं तो बाबा ने कहा वो सब खत्म हो जाएगा, तो फिर नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। लिखेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि जब लिखते हैं तो एक तो हम ध्यान से सुनते हैं, दूसरा फिर मन में रिपीट होता है लिखते समय, और तीसरा हमारे पास है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं सारे दिन के अंदर, और चौथा क्या बेनिफिट है, ये जो ब्राह्मण आत्माएं डायरी में बाबा की पॉइंट्स नोट करती हैं, वो द्वापर युग पर जब उथल पथल होंगी ना, सब कुछ दब जाएगा ना, कलयुग के अंत में भी दबेगा, फिर भी दबेगा, फिर जब द्वापर के शुरू में बीच में शास्त्र आदि बनेंगे, संन्यास मार्ग आएगा, तो फिर कुछ कुछ वो जो हम बच्चों ने लिखा है ना, तो उनके हाथ लगेगा। तो इसलिए वो जैसे बाबा कहते हैं ना, आटे में नमक मिसल, हमारा लिखा हुआ है वो नमक मिसल सत्य होगा शास्त्रों में। तो इसलिए लिखना बहुत बहुत जरूरी है। भले मोबाइल में मुरली होती है, लेकिन लिखना एक अपना ही आनंद होता है। तो बाबा ने कहा पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है, जो बुद्धि में याद रहती है, नंबर वार तो है ना। मुख्य बात क्या, क्या मुख्य बात बता रहे हैं बाबा आज, बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को भी याद करना है, और धीरे धीरे कहता है बाबा, एक साथ नहीं, विकर्म कोई विकर्म नहीं करना है, और गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, और पवित्र जरूर बनना है। कितनी सारी बातें बताई, पहली बात बाप को याद कर, ये मुख्य बातों में आई। दूसरी बात सृष्टि चक्र को भी याद करना है। तीसरी बात कोई विकर्म नहीं करना है और जो परिवार वाले उनके लिए, कुमार कुमारियों के लिए नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पवित्र भी जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, कान पकड़ रहा है बाबा, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो बाबा ने जो कराया वो कराया तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़े ही सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वो कभी नहीं रह सकेंगे, अपनी मर्जी से किया है तो बाबा ने कहा वो वैलिड नहीं है, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है, एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें, ये करना है तो दुनिया में जाके करो, यहां क्यों गंध फैलाते। इससे संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। कई माँ बाप भी गृहस्थी यहां ही ढूंढते हैं, कोई ज्ञानी मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। अरे एक गटर में गया दो जाएंगे, इससे तो करना ही तो दुनिया में करे। समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं है, जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी है, आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सत्युगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, क्या आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे, जो जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति ये पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब तो उच्च पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, साकार में बाबा थे तो पार्टियां आती थी तो बाबा कहते सब बादल भरने के लिए आए हैं ना, फिर अपने अपने स्थान पर ये बादल जाकर के बरसेंगे, माना सर्विस करेंगे। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे। पहले तो ब्लैक पेपर पर व्हाइट लाइनिंग के ही चित्र थे, और वो भी देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रदर्शनी कहां कहां बड़े बड़े शहरों में होती थी, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, ब्लैक शीट के ऊपर व्हाइट लाइनिंग। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे, इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, उनके अंदर में ये पक्का होता, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा, क्या होगा, खुशी के ढोल बजते रहेंगे। एक होता खुशी होना और एक होता अंदर ढोल बजते रहना। ढोल कैसे बजते अंदर? ढोल कैसे बजते अंदर? कभी बजे किसी के अंदर? सबके अंदर बजते होंगे, लेकिन उसको महसूस करना है। सर्विस का बहुत शौक होगा, ढोल बजेगा और वो दौड़ेगा। जैसे ढोल बजता है तो रास करते हैं ना, नाचते हैं ना, ऐसे ही अंदर खुशी के ढोल बजेंगे तो सेवा करने के लिए नाचता रहेगा, भागता रहेगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। जैसे बाबा अकेला ही तो चला, लेकिन कारवा बढ़ता गया, ऐसे बाबा कहते तुम्हारे साथ और मिलते जाएंगे। आखिरी एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उनकी राजाई है, उनके पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह भी भूत पूजा है, इसीलिए पहले ही बाबा ने कहा मैं रूह रिहान करता हूं। किससे? अपने बच्चों से, जो अपने को भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं, क्योंकि ये सब बातें तो औरों के सामने कह नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा ये भी भूत पूजा है, मेरे तो पैर ही नहीं है, इसीलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहां ईश्वर की संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुकाल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूं। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या चीज है, ये बात बाप ही आकर के समझाती है। मैं हूं, बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं हूं परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूं, तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूं, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सत्युग में भक्ति की कोई बात ही नहीं होती है, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। सारे कल्प में नहीं मिलता है कभी भी, इस संगम युग पर ही जब बाबा आते हैं तभी हमको ये ज्ञान मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है मैं आत्मा हूं, अपने भाई को बाप का संदेश देता हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संघ का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। बाहर में जो संघ दोष होता उससे तो हमने संभाला, लेकिन यहां भी संघ दोष से अपने को संभालना है, उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विस्तार है, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गाओ। इतना महत्व है समय का, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारा है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। हमको तो कौन मिला है, ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखे देने वाला साथी नहीं है। ना तो शरीर छोड़ करके जाएगा और ना ही दुनियावी रीति से आजकल धोखा दे देते, ऐसे भी साथ नहीं छोड़ेगा। कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा क्या करो, साथ साथ रहो, हर कर्म में साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति। कोई डायरेक्शन सुनाने हैं क्या? यूं तो आज से भट्टी आरंभ हो रही है, जो भी भट्टी के लिए भाई बहने आए हुए हैं उनको शाम को 5:15 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचना है। आज वेलकम सेशन रहेगा। ओम शांति।